Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमने खुदा को कितने जगहों पे ढूंढा। कई बार चर्चों में ढूंढा, कहीं गिरजाघरों में और कभी कभी मंदिरों में भी ढूंढा। लेकिन किसी एक फकीर ने ये बहुत खूबसूरत बात कही है कि खुदा ऐसे नहीं मिलेंगे, खुदा तब मिलेंगे जब आप खुद को खो देंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके मोहन सिंघल भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो भाई जी।
धन्यवाद
जी। शुरुआत मैंने की ये कहकर कि भगवान को हम ढूंढते आए हर एक जगह पर, लेकिन वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो तभी ही मिलेगा जब हम खुद को खो देंगे। इस पर थोड़ी सी अगर आप टिप्पणी दें तो बहुत अच्छा होगा।
ये जिस भाव से कहा गया है, मैं समझता हूँ खुद को खो देने का भाव ये है कि ईश्वर का अस्तित्व जानने के लिए जो भी ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान में पहले तो हम इतना डूब जाएं, इतना उसकी गहराई में चले जाएं, जिससे कि हमें उसका आभास होने लगे। एक होता है थ्योरेटिकल ज्ञान, एक होती है उसकी अनुभूति। तो ज्ञान तो बहुत जगह है ईश्वर के बारे में, लेकिन उस ज्ञान को हम अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जब प्रयोग में लाते हैं, तो जो ईश्वर के गुण और शक्तियां हैं, ईश्वर को कहा गया है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। तो इन सब ज्ञान, शक्ति, गुण, प्रेम, आनंद, सुख, इन सब की अनुभूतियों में हम खो जाए, तो मैं समझता हूँ इसका तात्पर्य यह है कि खुद को इसमें डुबो देने का तात्पर्य है। खुसरो होके गए हैं बहुत बड़े दार्शनिक, उन्होंने भी कुछ इस रेफरेंस में बोला है कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। प्रेम के लिए
जी।
बस ईश्वर के प्रेम में जो डूबा वो तो पार हो गया। और इस रीति से पार होने का भाव, खो देने का भाव, मैं समझता हूँ यही है जो कि आपने कहा। और उन गुणों की अनुभूति करना, जैसे ईश्वर के अनेक गुण हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में कुछ दो तीन चीजों की मुख्य कामना करता है, एक तो सुख की और एक शांति की। इसीलिए जब उसे सुख शांति का अनुभव होता है, अनुभूति होती है, तो फिर जब वो उसमें डूबने लगता है तो उसके डूबने में उसे वास्तव में बहुत प्राप्ति होती है।
भाजी, पर जब हम बात करते हैं सुख की, अर्थात हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस ढूंढना इतना आसान भी नहीं रहा है आज की दुनिया में। आज हम चाहते हैं, कई बार हम वस्तुओं में, कई बार हम वैभवों में, कई बार व्यक्तियों में, इन सभी चीजों में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में खुशी तो मिल ही नहीं रही कहीं भी। तो उसकी सही सोर्स क्या है?
खुशी जो है ना, जैसे पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और खुशी, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली। जो आपने सही कहा कि ये कोई वस्तुओं में, व्यक्तियों के द्वारा, वैभव में, उनमें नहीं मिलती है, लेकिन दे आर द वाया मीडिया। और इसीलिए खुशी भी स्टेट ऑफ माइंड है। और इसके लिए बड़ा सिंपल एक फार्मूला जैसा कहा जा सकता है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। यानी कि खुशी जो है, अचीवमेंट यानी प्राप्ति, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस, मनुष्य की जो अपेक्षाएं होती हैं दूसरों से। तो इस फार्मूले से बिल्कुल स्पष्ट है कि हैप्पीनेस लेवल मनुष्य का बढ़ता है अगर उसकी अचीवमेंट्स बढ़ती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मेजर तो होना चाहिए ना खुशी का। तो खुशी का मेजर आज की दुनिया में मनुष्य यही समझता है कि उसने किसी चीज की कामना की और वो उसको अचीव हो गई, प्राप्त हो गई, उससे वो खुश हो गया, खुशी उसकी बढ़ गई। तो अचीवमेंट जितनी होती हैं बढ़ती हैं, मनुष्य का हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ता है। और डिनोमिनेटर में नीचे जो है एक्सपेक्टेशंस, ये एक बहुत गुह्य बात है, जितनी मनुष्य की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये डिनोमिनेटर में नीचे है उतना हैप्पीनेस लेवल कम होता चला जाता है, क्योंकि ऑल द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड।
एग्जैक्टली,
मनुष्य की अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं लेकिन पूरी तो होती नहीं है सभी इच्छाएं। इस कारण से अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में खुश रहें तो उसके लिए एक बात तो अब अचीवमेंट्स तो हमारे हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। हमने कोशिश करी, पुरुषार्थ किया, मेहनत करी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो इसीलिए अचीवमेंट अगर होती है तो हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा, लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर में है कि एक्सपेक्टेशन, वो हमारे हाथ में, हम कितनी कम से कम रखें एक्सपेक्टेशन या बहुत ज़्यादा रखें। तो जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी कम होंगी रिलेटिवली, उतना हमारा हैप्पीनेस लेवल हाई होगा।
पर भाई जी, एक्सपेक्टेशंस की जब हम बात करते हैं, आज हम जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे में एक्सपेक्टेशंस होना तो स्वाभाविक सी बात है।
बिल्कुल,
क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो हम किस चीज को लुक फॉरवर्ड करके आगे बढ़ रहे हैं,
राइट?
तो ऐसे में इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ अगर मैं एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ तो?
नहीं, एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्वाभाविक है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस कई बार क्या होती हैं, उसके पीछे काफ़ी रिटर्न एक्सपेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स है, उनकी ड्यूटी है अपने बच्चे को भाई बेस्ट इनपुट दें, पढ़ाई दें, ट्यूशंस दें, जिससे कि वो बहुत एक्सेल करें अपनी पढ़ाई में, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन अगर सटली कहीं माइंड में ये है कि मैं इसको ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं रिटायर होऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तब ये मेरी संभाल करेगा, और ये एक्सपेक्टेशन अगर होती है, तो आज के युग में, जमाने में जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह ज़्यादा हैं, तो इस ज़माने में ऑल एक्सपेक्टेशंस आर नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड। तो इसीलिए क्या होगा कि रिटर्न में अगर हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं और ये अगर पूरी हमारी नहीं होती है तो क्या है, वन कम्स डाउन टू द बॉटम, अर्थ में आ जाता है, सब अपेक्षाएं उसकी धूमिल हो जाती है, उसमें वो दुखी हो जाता है सुख की बजाय। तो इस रेफरेंस में कहा गया है कि यू शुड हैव मिनिमम एक्सपेक्टेशन। बेटे के प्रति हमारी ड्यूटी है, पति की पत्नी के लिए एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो ड्यूटी है वो कर्म करते चलें, लेकिन रिटर्न में अगर एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो एक्सपेक्टेशन को हम कम से कम रखें, अपनी ड्यूटी फुलफिल करते चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सटल एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती जाएंगी।
बिल्कुल।
लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन रिटर्न में ये हो गया कि इस लेवल पर वो हमारा मानो बेटा है, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, अब क्या सिचुएशन उस वक्त होती है, कहाँ कैसी उसके फैमिली होती है, मैरिड लाइफ होती है क्या, तो उस सब के आधार पर ये डिपेंड करता है।
बिल्कुल।
तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में अगर फुलफिल नहीं होती है तो भाई उसको बहुत दुख का अनुभव होगा। तो इस रेफरेंस में कहा गया है कि हस्बैंड की वाइफ से, पिता की बेटे से, और आपस में सबके परिवार वालों की, जूनियर्स के, सीनियर्स के एक्सपेक्टेशन, हाँ हम उसे मैक्सिमम वो दें और उसे ट्रेनिंग जो देनी है हर एक को, मानो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर है और एक्सपेक्टेशन हमारी होती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ साथ हमारा इनपुट भी उस लेवल का हो कि वो दूसरा हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे, वो फुलफिल कर सके। अगर हमारा इनपुट उतना नहीं होगा और एक्सपेक्टेशन ही होगी खाली, तो उसमें थोड़ा गैप जितना हो जाएगा, प्रॉब्लम आने की संभावना है।
जी भाई जी, जब हम बात करते हैं खुशी की, हम छोटी छोटी चीजों में कई बार इतने खुश हो जाते हैं, किसी ने अगर हमें एक गुलाब का फूल लाके दे दिया, या कोई गिफ्ट कर दिया, या चॉकलेट, कोई भी चीज अगर हमें मिलती है जिंदगी में किसी और व्यक्ति से, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन देने के वक्त हम थोड़ा सा सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं कोई भी चीज किसी और व्यक्ति को देने के लिए, ऐसा क्यों होता है? ये दोनों के बीच में इतना अंतर क्यों है? जब हम किसी को दे रहे हैं तो भी हमें उतनी खुशी होनी चाहिए ना?
आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं
जी,
ये एक भौतिक दुनिया है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो हम हर चीज को मेटलिस्टिक चीज के तराजू पर आंकना चाहते हैं, आंकते भी हैं। इसलिए जब हम देते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, क्योंकि हम किसी चीज से अलग हो रहे हैं, उसमें हमारा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो रहा है और किसी को दे रहे हैं। और जब हमारे पास कोई चीज आती है तो वो चीज ऐड हो रही है हमारे पास। इसीलिए भौतिक रीति से तो ये बात देखने में सही आती है, लेकिन जो मन के नियम हैं, जो सूक्ष्म चीज है, वो इससे अलग है। और खुशी जो है वो सूक्ष्मता से संबंधित रखती है, भौतिक चीजें भौतिक चीजों से संबंध रखती हैं। तो इस कारण से खुशी हमारी तब बढ़ती है जब हमारा मन जो है, हम किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं खुशी की बात, और मन का रूल ही ऐसा है कि जब हम शेयर करते हैं वो मल्टीप्लाई होती जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी मेरा बच्चा है, उसका कोई एग्जामिनेशन में वो पास हुआ बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अब मैं सबको बताता फिर रहा हूँ भाई उसके 90% मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छा है, खुशी है। तो जितना जितना मैं बता रहा हूँ उतनी खुशी बढ़ रही है।
बिल्कुल।
तो ये मन का लॉ है कि देने में वो बढ़ती है, जबकि भौतिक लॉ जो है देने में कोई चीज कम होती है। तो इस कारण से जब भौतिक स्तर पर हम देखते हैं तो हमारा हैप्पीनेस लेवल कम होता है, क्योंकि वो चीज कम हो रही है। लेकिन अगर मानसिक स्तर पर देखेंगे ना, तो वो चीज हमें, क्योंकि जब हम किसी को दे रहे हैं हम किस भाव से दे रहे हैं, जब हम किसी बहुत प्रिय जन को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, अपने कोई लवर भी लवर्स को दे रहे हैं लाइक दैट, तो उससे क्या होता है, हमारा मन के भाव के कारण वो डिवाइड हो रहा है शेयर, उसमें खुशी बढ़ रही है। तो डिपेंड ये करता है कि हम किस मानसिक भाव से उस चीज को दे रहे हैं
जी,
तो उसके आधार पर हमारी खुशी कम या जास्ती होती।
भाई जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कई बार खुशी को पोस्टपोन्ड करते रहते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मुझे ये प्रमोशन मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी, या फिर अगर हाँ मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी। ये किस हद तक सही है, क्योंकि उस चीज़ के वजह से हम अभी तो खुश नहीं हैं, हम पोस्टपोन्ड कर रहे हैं उस खुशी को, ये किस हद तक सही है?
ये तो स्वाभाविक जैसा ही लगता है कि कोई चीज की एक्सपेक्टेशन जब होती है और वो मिल जाती है तो खुशी होती है।
बिल्कुल।
जैसे आपको बताया था खुशी का फार्मूला अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन।
बिल्कुल।
तो आपने कुछ सोचा और वो आपको अचीव आपने कर लिया, खुशी हो गई। तो इस कारण से आप उसे पोस्टपोन नहीं कर रहे, यू आर वेटिंग फॉर दैट इवेंट।
करेक्ट।
हाँ, वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे पोस्टपोन, तो वो है कि हम कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हम चाहते हैं लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है जिसको हम ग्रैब कर सकें, तो ये पोस्टपोनमेंट तो हमारे हाथ में तो है नहीं, सो कॉल्ड पोस्टपोनमेंट। तो इस कारण से इसको हम पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द इवेंट। तो इसलिए इस इवेंट को हमें टाइम का नेचुरली वेट करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आएगा इवेंट उतना वो इवेंट हमारी खुशी को बढ़ाएगा।
बिल्कुल ठीक है आपने भाई जी कि हम उस चीज को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो चीज अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है।
राइट।
पर भाई जी ये बात भी तो सही है ना कि अगर कोई चीज हम हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, अगर वो चीज हमसे दूर है तो फिर तो मेरे लिए जायज है ना कि मैं थोड़ी सी अपसेट हो जाऊं, तो ये किस हद तक सही है, या फिर वो चीज मुझ पर इतना ज्यादा हावी ना हो कि मेरी खुशी खो दे, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या उस चीज को वेट करते हुए भी मुझे खुश रहना है, ये एक तरीका है, या दूसरा कि थोड़ा सा दुखी हो जाए तो भी चलेगा?
देखिए, कोई मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता
जी,
और ये बात जो है, जो दूसरी चीज आप बता रहे थे शांति या पीस
जी,
ये उसके साथ ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे खुशी की ये डेफिनेशन बताया, ऐसे पीस की डेफिनेशन है कि वो डायरेक्टली रिलेटेड हमारी डिजायर से, हमारी इच्छाओं से है। ये भी एक इच्छा है कि हम कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल।
तो पीस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजायर, और उसका फार्मूला ये कह सकते हैं कि पीस इज इक्वल टू डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय डिजायर्स अनफुलफिल्ड।
ओके।
यानी इच्छाएं जो तृप्त हो जाती हैं डिवाइडेड बाय अतृप्त इच्छाएं। तो जितनी हमारी इच्छाएं, इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, एम्बिशंस, लेकिन एम्बिशंस और इच्छाओं में थोड़ी एक बहुत मिनिमम, बहुत एक थिन लाइन है। हर मनुष्य को में एम्बिशंस तो होनी चाहिए, आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, ये प्राप्त करना है। एम्बिशंस नहीं होगी तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा?
बिल्कुल।
लेकिन वो ऐसी भी ना हो जाए, वो एम्बिशंस उसके मन की शांति को हर लें, रात को नींद ना आने दें, नींद भी अगर आ रही है तो उसमें सपने में भी वही इच्छाएं परेशान कर रही हैं, और वो व्यक्ति शांति की बजाय अगर अशांति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन हो रहा है, और यहाँ तक कभी डिप्रेशन भी आ जाता है, तो ये जो है ना शांति के मार्ग में एक बाधक चीज़ हो गई उसके लिए।
बिल्कुल।
तो इसीलिए इच्छाएं करें, लेकिन इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इच्छाएं हमारे नियंत्रण में रहें, कंट्रोल में रहें, और वो ही एम्बिशंस हैं। तो एम्बिशंस हो, जरूर हो, लेकिन हम उन्हें अपने नियंत्रण में रखेंगे, कंट्रोल में, तो क्या होगा, हम उसे अचीव करने की दिशा में भी पीसफुली बढ़ सकेंगे। क्योंकि कोई चीज को की तरफ अगर हम बढ़ते हैं प्राप्ति के लिए, माइंड जितना काम क्वाइट होगा, धैर्यता होगी, शीतलता होगा, सोचने की शक्ति ठीक होगी, निर्णय शक्ति, तो हम किसी चीज़ को हासिल यथार्थ रीति से कम समय में कर पाएंगे। और अगर वही उद्वेग हुआ, बहुत ज़्यादा कोई क्रोध में की बात हुई, कोई ऐसा आवेग हुआ, तो उसमें मनुष्य की डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी ना वो धूमिल हो जाती है। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाता, इसीलिए जो गोल है उसका सामने दिखते हुए भी कई बार वो अचीव नहीं कर पाता। इसीलिए डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय डिजायर्स अनफुलफिल्ड ना, तो जितनी हमारी डिजायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स अगर बहुत ज्यादा हुई, ये चाहिए, ये है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, आदि आदि, कोई भी चीज के लिए फिजिकल या सटल लेवल पर जो डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड वो नीचे हैं डिनोमिनेटर में हैं, तो इसका मतलब लेवल ऑफ पीस हमारा जो है ना, वो जो होगा, जो शांति होनी चाहिए, अनफुलफिल्ड डिज़ायर ज़्यादा हुई तो शांति का लेवल हमारा बहुत कम हो जाएगा।
ओके।
हाँ, सपोज ए इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो वाई जो है अनफुलफिल्ड डिज़ायर, वाई जितना ज़्यादा होगा उसका रिजल्ट ए उतना कम होगा, पीस ऑफ माइंड कम होगी। और जब पीस ऑफ माइंड कम होगी तो हैप्पीनेस को भी आदमी उसी तराजू में तोलेगा, तो हैप्पीनेस भी उसको कम अनुभूति होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इच्छाएं जो हैं डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो इच्छाएं तो होनी भी चाहिए, एम्बिशंस होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी हमें देखना है हमें उन्हें अपने पर हावी नहीं होने देना।
बिल्कुल।
जब हम चाहें, जैसे संकल्प होता है, कोई भी बात होती है, जब चेतन मन होता है, जब हम चाहते हैं तब विचार करते हैं, कोई भी चीज़ का एग्जामिनेशन है उस वक्त एग्जाम का ही विचार आ रहा है, लिखते जाते हैं, जो चीज़ का विचार जिस वक्त हम चाहते हैं उस वक्त अगर होता है उसमें सफलता होती है। कई बार विचार न चाहते हुए भी आ जाते हैं।
करेक्ट।
वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तो वो विचार जो है ना वो अक्सर करके दुखदायी विचार हो जाते हैं।
आज हम बात कर रहे हैं शांति की। पीस एक अपने आप में एक सपना की तरह रह गया, एक ख्वाब बनकर रह गया है हम सभी के लिए, क्योंकि पीस हासिल करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में पीस को कैसे बरकरार रखकर हम अपनी पूरी दिनचर्या को और बेहतरीन बना पाएंगे?
देखिए, पीस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड।
जी,
पीस इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ नॉइस।
Okay.
हाँ, तो कई बार हम एब्सेंस, हम शांति में चले गए, पहाड़ों की तरफ एकांत में चले गए, कहीं गुफा दूर चले गए शहर के वातावरण से, हम समझते हैं हमें पीस मिल रही है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमें शांति कुछ मिल जाए क्योंकि नॉइस से दूर हो गए, लेकिन इंटरनल नॉइस का क्या होगा कि बाहर का तो हल्ला गुल्ला बंद हो गया, कम हो गया, लेकिन अंदर अगर विचारों की जो टर्बुलेंस चल रही है, तो रियल पीस इज Where the turbulence of mind ceases, जो माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा उद्वेग है, जो विचार हैं कई सारे, वो शांत हो जाते हैं, तो वो वास्तव में पीस ऑफ माइंड है।
ओके।
तो इस कारण से बाहर का वातावरण मदद तो करता है, लेकिन नॉट नेसेसरली पीस को लाता है। हम पीस उसी को समझ लेते हैं अभी देशों में, मानो युद्ध नहीं हो रहा है, एब्सेंस ऑफ वार इट इज पीस, लेकिन ये भी पीस नहीं है। कोल्ड वार चल रही है, दुश्मनी चल रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना, तो ये भी पीस नहीं है। तो वास्तव में पीस इज ए स्टेट ऑफ माइंड कि बाहर कुछ भी होता रहे, मैं जब चाहूँ तो अपने को बाहर की सिचुएशन से विड्रॉ करके अंदर उस पीस ऑफ माइंड की अनुभूति कर सकूं, तो दैट इज रियली पीस ऑफ माइंड। तो पीस इज ऑल्सो सटल, जैसे हैप्पीनेस सटल है, सुख जो है वो भौतिक चीजों में है, मकान है, मोटर है, फ्रिज है, ऑल दीज थिंग्स, लेकिन उससे जो ड्राइव होती है वो है खुशी। इसी तरह नॉइज वगैरह जो है, तो उसमें जो साइलेंस है, इसीलिए कहते हैं साइलेंस इज द क्लाइमैक्स ऑफ नॉइस, ये कहा गया है। हाँ, कहीं भी फिल्म में भी डायलॉग होगा और बोलते बोलते सडनली अगर साइलेंस हो गया, इट विल कन्वे सम मीनिंग।
करेक्ट,
जैसी सिचुएशन है, इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ नॉइस। तो इसीलिए पेपर में भी जब कुछ लिखा जाता है, जो लिखा जाता है उसकी वैल्यू है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसकी वैल्यू जो बीच में स्पेस छोड़ी जाती है, उसके आधार पर ही जो लिखा गया है उसकी भी वैल्यू होती है।
बिल्कुल।
तो ये जो साइलेंस है ना, इसका अगर हम धीरे 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 कुछ थोड़े समय के लिए बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे, अपने को विड्रॉ करते रहेंगे, तो ये बाहर की नॉइस से विड्रॉ कर लेना, ये हमको बड़ा हेल्पफुल रहता है रियल साइलेंस में, रियल पीस ऑफ माइंड की तरफ जाने के लिए। मन के अंदर उद्योग खत्म हो जाए।
भाई जी, इस पर मुझे एक सवाल आया दिमाग में। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मंदिरों में जाते हैं या फिर गिरजाघरों में या फिर मक्का मदीना जहाँ भी जाते हैं, वहाँ का माहौल इतना सुंदर होता है, क्यों ऐसा होता है कि वही माहौल हम अपने घर में नहीं क्रिएट कर पाते? इन दोनों के बीच में इतना अंतर क्यों है?
ये बहुत अच्छा आपने कहा। आपने सुना होगा कि व्यक्ति होता है तो व्यक्ति का ऑरा भी होता है, उस ऑरा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एक साइंटिस्ट होके गए थे किरलियन, रशियन साइंटिस्ट, मुझे भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जब मैं रशिया गया था 3 साल पहले, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले आए थे, वो सबका ऑरा नापते थे।
अच्छा।
हाँ, ऐसा कैमरा था, तो उस ऑरा से वो मनुष्य के अंदर क्या विचार चल रहे हैं उसका वो मतलब उस निष्कर्ष पर आते थे। तो ऑरा जो है हम सब एमिट करते रहते हैं, इन आँखों से नहीं देखते, और वो ऑरा से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उससे हम एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसीलिए मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, या कई ऐसे सन्यासी होते हैं जिनके सानिध्य में जाने से बड़ी शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा, उनके वाइब्रेशन ऐसे हैं कि उन्होंने अपना ऐसा जोन बनाया हुआ है जिस जोन के अंदर आने से दूसरा कोई भी आता है वो भी उस शांति की अनुभूति करता है। तो हम सबका कोई ना कोई ऐसा जोन है जिस जो हमारी विचारधारा के अनुरूप वो बनता है, दुख का या सुख का, शांति का या अशांति का। इसीलिए मंदिर मस्जिद वहाँ क्या है, पुजारी होते हैं, वहाँ मंदिर लोग आते हैं, उस भावना से आते हैं, उस श्रद्धा से आते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जलती रहती है, भजन होते रहते हैं, तो वहाँ का वातावरण ऐसा हो जाता है, जो वातावरण जो है जिसे हम अपनी भाषा में शुद्ध, शांत, पवित्र, आनंदमय कह सकते हैं।
क्या तो ये टेम्परेरी, क्या ये हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है? क्योंकि वहाँ जाकर हम अच्छे संकल्प ही चलाते हैं,
राइट?
भगवान को या तो धन्यवाद करने जाते हैं या फिर कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई इम्प्योर थॉट वहाँ पे नहीं आता। तो क्या ये थॉट्स का असर है कि वो वायुमंडल वैसा बन गया है, या फिर वो पूजा पाठ का असर है, किस चीज का?
नहीं, थॉट्स का मेनली असर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो रहते हैं, जो आते हैं, वो उन थॉट से आते हैं। तो जो कोई अशुद्ध थॉट से भी आता है, चिंताग्रस्त आता है, तो वो वातावरण इतना चार्ज्ड है स्पिरिचुअली कि वो भी उस वातावरण से प्रभावित हो जाता है।
बिल्कुल।
तो वो ऑरा होता है। तो इस कारण से ये किरलियन फोटोग्राफी इसी बात को तो बिल्कुल स्पष्ट करती है कि जो हमारा जैसी विचारधाराएं हैं वैसा हमारा ऑरा बनता है, वैसे वाइब्रेशन होते हैं और वैसा वातावरण बनता है। तो इस कारण से ही जब किसी योगी पुरुष के संबंध संपर्क में आते हैं हम वैसा ही अनुभव करते हैं, और ये जनरेट होता है हमारी इंटरनल विचारधारा से। तो जो व्यक्ति जैसी विचारधारा का होता है, यहाँ भी ब्रह्मा कुमारी मुझे याद आता है, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे, हम लोग जब भी बाबा के से मिलने जाते थे, कई चीज लेकर जाते थे बाबा से, जाके हम ये पूछेंगे, ये करेंगे, ये हमारे मन में प्रश्न है। और जैसे ही बाबा के सम्मुख गए, अब बाबा की इतनी शांति फुल पीसफुल स्टेज होती थी, उस वातावरण में गए तो बस दृष्टि ली और उसी में ही खो जाते थे, भूल जाते थे कि हम किस लिए आए हैं, क्या क्या प्रश्न पूछने हैं। बाबा पूछते भी थे, हाँ बच्चे आए हो, कुछ पूछना है? ये नहीं बाबा, बस सब प्रश्नों का हल हो गया। तो जिनकी अपनी विचारधारा काफ़ी सशक्त होती है, शक्तिशाली होती है, तो उनका वातावरण भी वैसा ही क्रिएट होता है, और उसके आधार पर ना जो भी व्यक्ति उस वातावरण में आता है वो भी थोड़े समय के लिए टेम्प्ररी वैसा फील करता है।
भाई जी, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हम अपना वातावरण खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने ही थॉट्स से, और अगर हम दैवी माहौल चाहते हैं वो हम अपने घर के अंदर और अपने ऑफिस के अंदर भी सिर्फ अपनी अच्छी सोच के साथ क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति।
धन्यवाद। ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, थॉट्स जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये तो अपने आप ही आते हैं, रियलिटी ये है कि थॉट्स आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आज ये भी जाना कि खुशी का सबसे बड़ा सोर्स आप खुद हैं। अगर आप वस्तुओं में, वैभवों में और व्यक्तियों में ये ढूंढने को जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, लेकिन क्षण भर के लिए। आप खुद अगर क्रिएट करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस होगी। साथ साथ हमने ये भी जाना कि अगर हम पीस चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर में पॉजिटिव थॉट्स का उजागरण करने की ज़रूरत है। आप धीरे धीरे अगर खुद पीसफुल होंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी पीसफुल हो जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।